أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحی کو مختوم. آج ہم شروع کریں گے غزوہ طائف. اگر آپ بک کو فالو کریں تو 567 پیج سے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. غزوہ طائف، یہ غزوہ در حقیقت غزوہ حنین کا پھیلاؤ ہے، یعنی اسی کے کچھ اثرات. چونکہ خوازن اور ثقیف کے بیشتر افراد، یعنی بہت سارے لوگ، شکست کھا چکے تھے، اور اپنے جنرل کمانڈر مالک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف ہی آئے تھے اور یہیں قلعہ بند ہو گئے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر جارانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال 8 ہجری میں طائف کا قصد کیا. کیا پتہ چلا؟ نبی کے پاس چھٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ایک پروجیکٹ، ایک مارکہ، ایک غزوہ پورا ہوا اور آپ دوسرے میں چل پڑتے. یہ وہ نقطہ ہے جو آج امت مسلمہ سے مسنگ ہے. ہم چھٹیوں کو اپنے تصور میں رکھنے کے ساتھ اپنے کلچر میں رکھتے ہوئے، اپنے اپنے ملک کے قومی دنوں کے ساتھ، پھر مذہبی چھٹیاں، اور پھر چھٹیاں ہی چھٹیاں. یاد رکھیے، مومن کی زندگی کام کی جگہ ہے، آخرت اور قبر آرام کی جگہ ہوگی. یہ جملہ گھر میں جگہ جگہ لکھ کر لگائیے. آپ کے بچے، آپ کے گھر والے اگر آپ کو کچھ ایکسٹرا کام کرتا دیکھے تو مجھے یقین ہے کہ اس کوٹیشن کو پڑھ کر ان کو یہ بہت تسلی ہوگی کہ آپ جو کر رہی ہیں وہ نہ صرف یہ ہے کہ اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ان سب کے فائدے کا ہے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ میں مال غنیمت تقسیم فرماتے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چیزوں کو پینڈنگ کرنے کی بجائے جو چیز پورے شرع صدر کے ساتھ مکمل ہو جائے اس کو کر لینا چاہیے، تاکہ اگلا پروجیکٹ جب کھلتا ہے تو ذہن فارغ ہوتا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو خالی کی جائے تاکہ پھر اس پہ مزید میموری آ سکے. اسی مقصد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 1000 فوج کا ہراول دستہ روانہ کیا گیا. ہراول ہوتا ہے جو سب سے آگے ہوتا ہے، پائنیئرز کہہ لیجئے. پھر آپ نے خود طائف کا رخ فرمایا. راستے میں نخلا، یمانیہ، پھر قرن منازل، پھر لیہ سے گزر ہوا اور یہاں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا، آپ نے اسے منہدم کروا دیا، یعنی گرا دیا. پھر سفر جاری رکھتے ہوئے طائف پہنچے اور قلعہ طائف کے قریب خیمہ زن ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا. محاصرے نے قدرے طول پکڑا. صحیح مسلم میں حضرت انس کی روایت ہے کہ یہ 40 دن تک جاری رہا، اور بعد سیرت لکھنے والوں نے اس کی مدت 20 دن دی، اور بعض 10 دن سے زیادہ، اور بعض نے 18، اور بعض نے 15. یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، اور کوئی وہاں بیٹھا تو نہیں تھا کہ کاغذ قلم لے کر لکھتا ہی رہتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف کی ایفرٹس جو ہوتی ہیں بہت ساری ان پلانڈ بھی ہو سکتی ہیں. ہر چیز پیپر میں لکھی نہیں جا سکتی، ہر چیز کے لیے آپ پہلے 100% شور نہیں ہوتے. کچھ چیزیں گو ود دا فلو پہ چلتی ہیں. دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کے واقعات بھی پیش آتے رہے. بلکہ پہلے پہل جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو قلعے کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ٹڈی دل چھایا ہوا ہے، یعنی فصلوں پہ پڑا ہوا ہے کیڑا. اس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے، 12 شہید ہوئے، اور انہیں اپنا کیمپ اٹھا کر موجود مسجد طائف کے پاس لے جانا پڑا. یہاں آپ دیکھیے کہ 12 گھرانوں میں میتیں تو آئی ہوں گی نا. آج ہمارے ہاں کلچر میں کتنا بڑا ایک سانحہ ہے یہ کہ کوئی ایک مر جائے، لیکن صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کا یہ معاملہ کہ آپ کسی کی خوشی اور موت کو کام سے رکنے کا نہیں بلکہ کام کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، یہ بات سیکھنے کی ہے. ہمارے تو کوئی ایک خوشی یا غم آ جائے कई दिन तक हम अपनी जगह पे वापस आ नहीं पाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हाल से निमटने के लिए अहले ताइफ पर मंजनीक नसब की एक किस्म की गुलेल, या आज दौरे हाजिर में तोप इसकी मिसाल है, और मुतद्दिद गोले फेंके जिसे क़िले की दीवार में शिगाफ पड़ गया और मुसलमानों की एक जमात दबावा के अंदर घुसकर आग लगाने के लिए दीवार तक पहुंच गई। लेकिन दुश्मन ने इन पर लोहे के जलते टुकड़े फेंके जिससे मजबूर होकर मुसलमान दबावा के नीचे से बाहर निकल आए, मगर बाहर निकले तो दुश्मन ने इन पर तीरों की बारिश कर दी जिससे बास मुसलमान शहीद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को जहर करने के लिए, यानी आपने दुश्मन को जहर करने के लिए एक और जंगी हिकमत अमली के तौर पर हुक्म दिया कि अंगूर के दरख्त काट कर जला दिए जाएं। मुसलमानों ने ज़रा बढ़ चढ़ कर ही कटाई कर दी, यानी कुछ ज़्यादा ही फसल काट दी। इस पर सकीफ ने अल्लाह ताला और कराबत का वास्ता देकर गुजारिश की, ठीक, यानी जब ज़रूरत पड़ी तो उनको ये करना पड़ा कि दरख्तों को काटना बंद कर दें। आपने अल्लाह के वास्ते और कराबत की खातिर हाथ रोक लिया। अमल का नुक्ता नोट कीजिए, जब कोई बीच में अल्लाह को ले आए या किसी रिश्तेदारी को ले आए तो उसकी बात माननी चाहिए। दौरान मुहासरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी यानी पैगाम देने वाले ने ऐलान किया, जो ग़ुलाम क़िले से उतर कर हमारे पास आ जाए वो आज़ाद है। इस ऐलान पर 23 यानी 23 पर्संस कले से निकलकर मुसलमानों में आज शामिल हुए। ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, काटने की बजाय गैरों को जोड़िए, अपने पास लाइए, अपने करीब कीजिए अपने अखलाक के साथ। और ग़ुलामों को तो ग़ुलामी से आज़ादी वैसे ही बहुत पसंद थी, कहाँ वो आपके साथ लड़ने आए और कहाँ वो मुसलमानों में शामिल हो गए। इन्हीं में हज़रत अबू बकरा रदी अल्लाह अन्हो भी थे, नोट कीजिएगा। कभी कभी अहदीस में इनके नाम से जब रिवायत आती है तो लोगों को गलती लगती है कि ये अबू बकर सिद्दीक है, नहीं, ये अबू बकरा थे। वो क़िले की दीवार पर चढ़कर एक चरखी या गरारी की मदद से, जिसके ज़रिए रहट यानी कुएं में से पानी खींचा जाता है, लटक कर नीचे आए थे। चूँकि गरारी को अरबी में बकरा कहते हैं, इसलिए इनकी कुनियत फिर आपने अबू बकरा रखी। आज आपको ये एक बड़ी नई चीज़ पता चली होगी, नोट कर ले। इन सब ग़ुलामों को रसूलुल्लाह ने आज़ाद कर दिया और हर एक को एक एक मुसलमान के हवाले कर दिया, किसे सामान वहम पहुंचाए। यह हादसा कले वालों के लिए बड़ा जानकाह था, यानी उनको ज़ाहिर इससे चोट पड़ी। इतने लोग वहाँ से निकल कर दूसरी तरफ चले गए तो उनके लिए तो यकीनन ये एक चीज़ मुश्किल थी। जब मुहासरा तूल पकड़ गया और क़िला काबू में आता नज़र ना आया और मुसलमानों पर तीरों की बारिश और गर्म लोहों की ज़द पड़ी, और इधर अहले क़िला ने साल भर का सामान खुर्दोनोश भी जमा कर लिया। ये भी नोट कीजिएगा, पहले लोगों को जंगों से पहले कितना सामान जमा रखना पड़ता था, जैसे लोगों ने लॉकडाउन के नाम पे जमा शुरू करना शुरू कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौफल बिन मुआविया दहली से मशवरा तलब किया। उसने कहा, लोमड़ी अपने भट्ट में घुस गई है, मुराद ये कि ये अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। अगर आप इस पर डटे रहे तो पकड़ लेंगे, और अगर छोड़ कर चले गए तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा ख़त्म करने का फ़ैसला फरमा लिया। यानी उनको तो और अच्छा हो गया ना कि अपने घर में बैठे आराम करें। जैसे लॉकडाउन में कुछ लोगों ने आराम भी बहुत किया जो बहुत टायर्ड थे और जिनकी ज़िंदगी में बहुत भाग दौड़ थी। तो याद रखिए, खैर खैर और शर में कोई ना कोई ज़रूर चीज़ होती है, खैर में शर और शर में खैर। लेकिन याद रहा, अल्लाह के नबी का यहाँ फैसला कुन अमल देखिए, ये एक लीडरशिप का तकाजा है कि वक्त और हालात के मुताबिक दुरुस्त फैसले करें। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए लोगों में ऐलान करवा दिया कि हम इंशाल्लाह कल वापस होंगे। लेकिन ये ऐलान सहाबा कराम पर गिरां गुज़रा, उनको अच्छा नहीं लगा। याद रखिए कि लीडर और टीम में 100% मुवाफ़क़त हो नहीं सकती, फिर आखिर सरेंडर उसी को करना है जिसने दूसरे को बड़ा माना। वो कहने लगे, ओह, ताइफ फतह किए बगैर वापस होंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, तो कल सुबह लड़ाई पर चलना है। चुनाचे दूसरे दिन लोग लड़ाई पर गए, लेकिन चोट खाने के सिवा कुछ हासिल ना हुआ। नोट कीजिएगा, जब उन्होंने अल्लाह के नबी की बात को दिल से नहीं माना तो आपने कहा करके देख लीजिए, करके देखा तो हुआ नुकसान। ये है वो ज़ुबान नबूवत जिसको वमा यंतिकुनिल हवा से कुरान मंसूब करता है। इसके बाद आपने फिर फरमाया कि हम इंशाल्लाह कल वापस होंगे। इस पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने बेचूनो चरा रखते सफ़र बांधना शुरू कर दिया। ये कैफियत देखकर रसूलुल्लाह मुस्कुराते रहे। पूरा एक ट्रेनिंग सेशन सिर्फ इस पे हो सकता है उन लोगों के लिए कि जो कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी मैनेजमेंट और लीडरशिप के अंडर काम करते हैं। बस दफ़ा बड़े को वो बात दिख रही होती है जो वो भी छोटों को बताना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह के नबी के इस अमल से पता चला कि एक दफ़ा ज़रा काम करने दिया जाए, जब वो ख़ुद देख लेंगे कि इससे नुकसान हुआ तो अगली दफ़ा फिर बात को खुशी से मानेंगे। इस असूल को आप अपने बच्चों पे भी इम्प्लीमेंट कीजिए कि ज़रा आप शौक़ पूरा कर लीजिए, ये मुराद है। और जब शौक़ पूरे हो जाते हैं तो फिर बाप की और माँ बाप की और बड़ों की बात बात में समझ आती है। वो जोश होता है, तबीयतों का, उम्र का फ़र्क, तजुर्बे की कमी, इसलिए ऐसी बातें होती हैं, वरना सहाबा किराम ऐसे नहीं थे कि अल्लाह के नबी की किसी बात से वो अपनी बात को ऊपर करें। इसके बाद जब लोगों ने डेरा डंडा उठाकर कूच किया, यानी वहाँ से सारा रैपअप किया, तो आपने फरमाया कि यूं कहो, आइबू ना ताइबू ना आबिदू ना लि रब्बिना हामिदून, हम पलटने वाले, तौबा करने वाले, इबादत गुजार हैं और अपने रब की हम करते हैं। कहा गया कि अल्लाह के रसूल आप सकीफ पर बददुआ करें। नोट करिए, जज्बाती लोग हमेशा जो नए लोग होते हैं या नए साम्राज्य के लीडर से अंडर जो लोग होते हैं वो जज्बातियत में जाते हैं, जबकि एक अच्छे लीडर का फैसला सुनिए, आपने बददुआ देने की बजाय क्या फरमाया, ए अल्लाह सकीफ को हिदायत दे और इन्हें ले आ। नया नया इख्तियार मिलता है ना इंसान को तो बहुत रोब डालता है। कहते हैं जिस टीचर को आता नहीं है ना ज़्यादा तो वो रोब बड़ा डालता है। इस तरह जो मर्द कमाते नहीं हैं अमूमन अपनी बीवियों पे बहुत रोब डालते हैं, यहाँ बिल्कुल वही बात है। तो हिल्म और इल्म को जमा कीजिए, अल्लाह हिकमत देगा। अब वो ड्रॉप सीन देखिए इस जंग का, जेराना में अम्वाले गनीमत की तकसीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से मुहासरा ख़त्म करके वापस आए तो जेराना में कई रोज़ माले गनीमत तकसीम किए बगैर ठहरे रहे। इस ताहिर का मकसद ये था कि ख्वाजन का वफद ताइफ होकर आपकी खिदमत में आ जाए और इसने जो खोया है सब ले जाए। क्या खूबसूरत हिकमतें, कोई सिखा सकता है आपको मुझे? ये बातें तो जब आप इस मैदान में पड़े और अल्लाह के नबी को बड़ा माने फिर समझ आती हैं। आम तौर पे तो ये बात समझ ही नहीं आ सकती कि कहाँ रुकने में खैर है, कहाँ से जाने में खैर है, कभी किसी इंतज़ार में खैर होती है, और इसी का नाम तजुर्बा है। अगर अल्लाह के नबी उठ के चले जाते आपको कौन रोकता, और टीम कितनी परेशान होगी, चलिए ना जल्दी करें, ख़त्म जो हो गया आप घर चले, इतने थके हुए हैं, पहले भी तो आपने हमें परेशान किया। मुँह से ना भी कहें लेकिन दिल में तो आ ही जाता है। और आप देखिए अभी एक गज़वे से फारिग नहीं हुए तो दूसरे गज़वे में आ चुके हैं। तो यही तो है लाइफ टाइम स्ट्रगल और नबी सल्लम पर सहाबा का एतमाद। और देखिए यहाँ से एक और बात पता चली कि ख्वाजन को मौका दिया गया कि आइए तौबा कीजिए, अपनी गलतियों पे नदामत लें और जो माल है दुनिया का ले जाएं और इस्लाम की छत के नीचे आ जाएं। लेकिन नहीं आए, और जब नहीं आए तो आपने माले गनीमत की तकसीम शुरू कर दी। क्या पता चला कि आपने फिर माले गनीमत को ही अपने लिए सपनी समझा। वो कहते हैं ना कि ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। अगर मुसलमान पैसे के लिए जंगों में जाते तो ये तो फ़ौरन बांट बूट के ख़त्म कर देते। नहीं, आपने उसको बाद में जब तकसीम किया ताकि कबाइल के सरदार और मक्का के अशराफ जो बड़ी हैरत से झांक रहे थे इनकी जुबान खामोश हो जाए। बड़ी बात है, मुखलिस और पुराने और ट्रेंड सहाबा की तो ये कैफियत नहीं थी कि हमें कुछ मिले, लेकिन नए नए लोग जो अभी चीज़ों में आते हैं उनको कभी कुछ माल चाहिए होता है, कभी तारीफ चाहिए होती है, कभी कुछ टाइटल चाहिए होते हैं। तो यहाँ इसी की तरफ इशारा है कि अल्लाह के नबी हर एक का ख्याल रखते थे, किसको किस चीज़ की इस वक्त तलब है या किसकी क्या ख्वाहिश है आप उसके ऊपर नज़र रखते। मुअल्लफ़तिल क़ुलूब की किस्मत ने सबसे पहले यावरी की, ये कौन होते हैं, नए नए इंक्लाइंट ज़कात की मारिफ में से, ज़कात के मसारिफ में एक मुसरफ है ना, ली मुअल्लफ़तिल क़ुलूब, उसी की तरफ इशारा है सूरह तौबा में। बताती है, यानी अभी जो नए नए इस्लाम की तरफ आए हैं उनको पहले खिलाना पड़ता है, उनको गिफ्ट्स देने पड़ते हैं। तो जब उनको ये माले गनीमत मिला तो इन्हें बड़े बड़े हिस्से दिए गए। इससे पता चलता है पुराने लोगों को ना भी मिले तो खैर है, नए लोगों को ट्रीट कीजिए। अबू सुफियान बिन हर्ब को 40 औकिया यानी कुछ कम 6 किलो चांदी और 100 ऊँट अता किए गए। उन्होंने कहा मेरा बेटा यजीद, आपने इतना ही यजीद को दे दिया। उसने कहा मेरा बेटा मुआविया, आपने उतना ही मुआविया को भी दे दिया। यानी तनहा अबू सुफियान को इसके बेटों समेत तकरीबन 18 यानी 18 किलो चांदी और 300 ऊँट हासिल हो गए। देखिए नए मुस्लिम थे ना, इस्लाम दिल में आते आता है, ईमान भी दिल में आते आता है, कुरान भी दिल में जज्ब होते वक्त लगता है। एक वक्त होता है कि सब कुछ आ भी रहा होता है, सब उसके बावजूद दुनिया की तलब और तड़प और ख्वाहिश होती है, चलो जो मिल जाए बेहतर ही है। लेकिन एक वक्त आता है कि बंदा लेने से ज़्यादा देने पे खुशी महसूस करता है। तो अबू सुफियान के साथ साथ नए और लोगों में हकीम बिन हिसाम भी थे, इनको 100 ऊँट दिए गए। आपने मज़ीद 100 ऊँटों का सवाल किया तो उससे आप फिर 100 ऊँट दिए गए। यहाँ से लग रहा है ना कि अल्लाह के नबी ऑफेंड नहीं होते थे। नए लोगों के बड़े लाड़ देखते थे, पुराने लोगों की बड़ी सख्त पकड़ करते थे, ये भी दिखेंगे आपको सीरत में बात। इस तरह सुफान बिन उमैया को 100 ऊँट फिर 100 ऊँट फिर 100 ऊँट यानी 300 ऊँट दिए गए। ये अखलाक अपनाने की ज़रूरत है बेगानों को अपना बनाने के लिए, बेगानों को अपना बनाने के लिए। और जिनके दिलों में ज़रा सी दावत या आपके नाम से रिजेंटमेंट थी उनको वाकई आपके साथ जोड़ने के लिए ये खूबसूरत टिप्स हैं जो इसमें हमें सीरत से मिलती हैं। हारिस बिन कल्दा को भी 100 ऊँट दिए गए और कुछ मजीद करशी और गैर करशी रोसा रईस की जमा, इनको 100 100 ऊँट दिए गए। सोचिए कितना माले गनीमत मिला। गए थे जंग करने और इतना कुछ लेकर आ गए, यही इस्लाम की शान है। आज भी आप अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, कुछ करके आऊँ कुछ करवा ले, अल्लाह फारिग क्यों बैठे, अल्लाह कुछ कर ले, कुछ मेरे से करा, और उससे आपको जो मिलता है वो आपने कभी तसव्वुर में भी नहीं रखा होता कि आपको इससे ये खैर मिल जाएगी। इसी तरह कुछ दूसरों को 50 50 और 40 40 ऊँट दिए गए। याद कीजिए वो पिछली जंग का किस्सा, कैसे अपने मवेशी और सारी चीज़ें लेकर आए थे, और अगर बात मान ली होती अपने ही बड़े किसी बुजुर्ग की तो ये सब चीज़ें उनके हाथ से ना जाती। कभी कभी बंदा दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई काम करता है लेकिन खुद नीचा होता है, इससे ये सीखने की बात है। खैर आपने इतना दिया, यहाँ तक कि लोगों में मशहूर हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बेदरेग अतिया देते हैं कि इन्हें फ़क्र का अंदेशा ही नहीं, यानी इनको नहीं लगता कि हम गरीब हो जाएंगे या क्या होगा। ये भी तो एक बहुत बड़ी बात थी ना जो लोगों के दिलों को इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए फ़ायदेमंद थी। सॉरी, चुनाचे माल की तलब में बद्दू आप पर टूट पड़े और आपको एक दरख्त के की जानिब सिमटने पर मजबूर कर दिया। तसव्वुर में आता है जैसे बकर ईद पे गोश्त लेने वाले बाज़ दफ़ा घर वालों को मजबूर कर देते हैं। और यहाँ देखिए बद्दू थे ना, नया नया इस्लाम तो था लेकिन अभी दिल से मोहब्बत नहीं गई थी माल की। इत्तफाक से आपकी चादर दरख्त में फंस कर रह गई। आपने फरमाया लोगों मेरी चादर दे दो, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मेरे पास तहामा के दरख्तों की तादाद में भी चौपाएँ हों तो इन्हें भी तुम पर तकसीम कर दूंगा, फिर तुम मुझे बखील ना पाओगे ना बुजदिल ना झूठा। इसके बाद आपने अपने ऊँट के बाजू में खड़े होकर इसकी कोहान से कुछ बाल ली और चुटकी में रखकर बुलंद फर करते हुए फरमाया लोगो वल्ला ही मेरे लिए तुम्हारे माले फ़ै में से कुछ भी नहीं, हद तक इतना बाल भी नहीं, सिर्फ खुम्स है और खुम्स भी तुम पर ही लौटा दिया जाता है। सूरह तौबा में जो पढ़ते हैं खुम्स जो निकलता है उसी का 5वां हिस्सा। क्या खूबसूरत बेनियाजियाँ हैं। और आप देखिए अल्लाह के नबी ने जो बाल उठाकर दिखाए, तो लीडर को हमेशा अपना दामन साफ करके दिखाना चाहिए। लोगों के दिलों में वहम आ सकते हैं, वसवसे आ सकते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ हो तो उसको पूरे यकीन से लोगों को ऐसी चीज़ों को खोल कर दिखा देना चाहिए कि मेरे बारे में कोई शक न करना। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब को देने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन साबित को हुक्म दिया कि माले गनीमत और फ़ौज को यकजा करके लोगों पर गनीमत की तकसीम का हिसाब लगाएं। उन्होंने ऐसा किया तो एक एक फ़ौजी के हिस्से में 4 4 ऊँट और 40 40 बकरियाँ आईं। जो शख्स सवार था यानी जिसका घोड़ा भी साथ शामिल था और ख़ुद भी था, इसे 12 ऊँट और 120 बकरियाँ मिली, यानी उसका हिस्सा ज़्यादा था। इससे क्या पता चलता है, जो जितना इस्लाम के लिए काम करेगा अल्लाह बाद में उसको उतना ही ज़्यादा दुनिया में भी इनाम देगा। लेकिन टाइम लगता है ना, इसलिए हम घबरा जाते हैं, या हमारे इर्द गिर्द के लोग कहते हैं कब ख़त्म होंगी ये सारी चीज़ें। आपको क्या पता कि ये ख़त्म हो गई तो कहीं बरकत ज़िंदगी की ना ख़त्म हो, और इसके मिलने में जो बरकत है शायद आप इसको आज फील ही नहीं कर पा रहे। खैर, ये तकसीम एक हकीमाना सियासत पर मबनी थी, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी अक्ल के रास्ते से नहीं बल्कि पेट के रास्ते से हक पर लाए जाते हैं। यानी जिस तरह जानवरों को एक मुट्ठी हरी घास दिखला दीजिए, वो इसकी तरफ भड़कते लपकते अपने महफूज ठिकाने तक जा पहुँचते हैं, इसी तरह इस किस्म के इंसान, यानी मस्कुरा किस्म राजे के जिनका ऊपर जिक्र हो रहा था, इस तरह इसी तरह के इंसानों के लिए भी मुख्तलिफ ढंग के असबाबे कशिश की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो ईमान से मानूस होकर उसके लिए पुरजोश बन जाए। देखिए, बहुत सारे लोग तो पढ़ तो छोड़िए, पढ़ा कर भी दिल से माल की मोहब्बत ना निकाल सके, तो कहाँ ये बेचारे कल के बच्चे जिन्होंने अभी कुछ पढ़ा नहीं, जिनको अभी कुछ मिला नहीं, अभी तस्किया नहीं, अभी तरबियत नहीं। इधर तो टाइम लगेगा, एक एक दाल अभी चूल्हे पे चढ़ा दी, अब तो लगेंगे 2 घंटे गलने में, और एक यह कि वो रात से हल्की आंच पे रखी थी, तो किसको ज़्यादा अच्छा गलना है, किसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें हैं, ये सारा कुछ जो है इसको सीखना है हमने इन सारी चीज़ों से, कि इस्लाम भी दिलों में आते ही आता है और आते आते एक दिन आ ही जाता है। शर्त यह कि चूल्हा गर्म रखिए, इल्म के पानी के साथ अपने आप को गलाते रहिए, जब इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि एक एक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आज इस्लाम के नाम पे मुश्किलें पेश कर रही है, कल आपको वो तसल्लियाँ दिलासे देने वाली भी होगी और आप इससे फ़ायदा भी उठा लेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं कि इस बांट पे और ये जो कुछ भी हुआ, कुछ दिलों में बातें आ गईं, आ जाती हैं, घबराए ना करें अगर दीन का काम करने वालों के बारे में, या दीन का काम करने वालों के बारे में, या फिर जो भी रिलेशनशिप्स है लीडर्स और टीम्स के मामलात में, और इसी तरह सो ऑन, जब टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में अगर कहीं ना कहीं आ जाती, इट्स ओके, ये नहीं रुक सकता। शर्त यह है कि आप सच्चे हों, हक पे हों, तो दिलों को साफ कर लें, कभी भी चीज़ को दिल में ना डालिए, कम्युनिकेट कीजिए, जो आपसे कटे आप उससे जुड़े, जो आपसे लिया दिया रहे आप उसके पास जाएं, जो आपको बुरा कहे आप उसको अच्छा कहिए, आप लोगों को जस्ट इज्जत दीजिए जो आपको बेइज्जत करे। ये वो खूबसूरत खूबियां हैं जो हिकमत के साथ ही वक्त के साथ आती हैं। तो आइए देखते हैं कि अनसार का हुज़्न और इज़्तिराब क्या था। ये सियासत पहले पहल समझी ना जा सकी, इसलिए कुछ ज़ुबानों पर हर्फ एतराज़ आ गया। अंसार पर खसूसन इस सियासत की ज़द पड़ी थी, क्योंकि वह सब के सब हुनैन के इन अति उताया से बिल्कुल महरूम रखे गए, हालांकि मुश्किल के वक्त इन्हीं को पुकारा गया था और वही अड़कर आए थे और वही उड़कर आए थे, यानी उनको ही पुकारा था अल्लाह के नबी ने, अनसार तुम किधर हो, तो वो आ गए, वही उड़कर आए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर इस तरह जंग की थी कि फास शिकस्त शानदार फतह में तब्दील हो गई थी। लेकिन अब वो देख रहे थे कि भागने वालों के हाथ पुर हैं और वो खुद महरूम और तहीदस्त। ये भी देखिए ह्यूमन नेचर है, इस पे इतनी बड़ी बात है सीखने की, यकीन करें कभी कोई छोड़ कर ना जाए, कभी को किसी से बदगुमान ना हो, इतना बात अगर समझ ले कि हमेशा नुकसान जाने वाले का होता है, हमेशा छोड़ने वाले का होता है, पत्ता दरख्त से जब गिर जाता है दोबारा जो मर्जी कर ले नहीं लगता, और एक कप की प्लेट जो टूटी आप उसमें एल्फी भी लगा लें, कुछ लगा लें, जोड़ का निशान बाकी ही रहता है। तो छोड़ने और तोड़ने और गलने झड़ने से बजाय टिके रहिए, टिके रहिए, एक दिन आपको इंशाल्लाह बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी जो नहीं आती। आज बात बात पे हम अलग होने की धमकियां देते, आगे नहीं चल सकते, मैं उसके साथ नहीं चल सकती, मैं वो नहीं कर सकती, ये नहीं, इन चीज़ों को कभी ज़िंदगी में ना लाएं। बड़ा बड़े मरहलों से गुजरना पड़ता है दोबारा जब बंदा एक किसी भी चीज़ के अंदर आता है। तो इब्ने इसहाक़ ने अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और कबाइले कुरैश को वतीये दी और अनसार को कुछ न दिया, तो अनसार ने जी ही जी में पेचोताप खाया और इनमें बहुत चहमगोई हुई। इससे पता चलता है जब दिलों में बात होती है तो लोग ज़रूर नजवा करते हैं, मेन स्ट्रीम तक बात करें ना करें दो साथी आपस में बात करने लगते हैं, यहाँ तक एक कहने वाले ने कहा अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम से जा मिले हैं। देखिए कितने नश्तर नहीं पड़े होंगे अल्लाह के नबी के दिल पे जब उन्होंने ये उड़ती छुड़ती बातें सुनी होंगी, क्योंकि बात रुकती नहीं है। याद रखिए, बात आपसे जल्दी सफ़र करके वहाँ पहुँच जाती है जहाँ आप खुद नहीं अभी पहुंचे होते। तो ये बातें हर दौर में रहीं, हर जगह रहेंगी। दीन का काम करने वाले फरिश्ते नहीं बन जाते। और यहाँ फिर देखिए, नए और पुराने का फ़र्क साफ जाहिर है। खैर, इसके बाद हज़रत साद बिन उबादा आपके पास हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, आपने इस हासिल शुदा माले फ़े में जो कुछ किया है, इस पर अंसार अपने जी ही जी में आप पर पेचोताप खा रहे हैं। आपने उसे अपनी कौम में तकसीम फरमाया। कबाइले अरब को बड़े बड़े हथिये दिए, लेकिन अंसार को कुछ ना दिया। आपने फरमाया, साद, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं भी तो अपनी कौम ही का एक आदमी हूँ। आपने फरमाया, अच्छा, तो अपनी कौम को इस छोलदारी में जमा करो, यानी एक जगह इकट्ठा लाओ। साथ रजी अल्लाह अन्हों ने निकल कर अंसार को इस छोलदारी में जमा किया, यानी उसके इर्द गिर्द कोई भी चीज़ कह लीजिए, अरबों की एक लैंग्वेज और एक पुरानी उर्दू का ये लफ्ज़ है। कुछ महाजरीन भी आ गए तो इन्हें दाखिल होने दिया, फिर कुछ दूसरे लोग भी आ गए तो इन्हें वापस कर दिया। मुराद है कि क्लोज सर्किट मीटिंग कॉल की गई, जिसमें कुछ गैर ज़रूरी लोग भी आ गए, कुछ को रहने दिया गया, कुछ को वापस कर दिया। क्या पता चला कि कुछ बातें कुछ को सुना दी जा सकती हैं, कुछ को उससे रोक दिया जा सकता है। जब सब लोग जमा हो गए तो हज़रत साद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि कबीले अंसार आपके लिए जमा हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ़ लाए, अल्लाह की हमदो सना की, फिर फरमाया, ये देखिए, ये है दिल को हिलाने वाली बातें। दिल, जब दिलों में कोई ना कोई बात आ जाती है ना, तो फिर वो ज़रूर कहीं ना कहीं जाकर कोई ना कोई गंदगी लाती है और उसमें से बहुत कुछ होता है। यकीन करें कि अगर सीरत को हम तरबियत के सेशन में देखें तो इससे बेहतर ट्रेनिंग सेशन और कोई कोर्स नहीं होता। हमेशा हमारे पास वक्त की कमी होती है, और ख़ास तौर पे जब बड़ी बुक्स जैसे कि ये राही को मख्तूम है। लेकिन ये कि अगर मुझे आप वक्त दें, मैं आपको इसमें से एक एक सफ़े में से 50-50 सबक और लेसन एंड मॉरल्स एंड हिकमतें लिखा सकती हूँ। लेकिन सिर्फ जल्दी में ये बात जो आपको देखिए कि इस पूरे किस्से में से समझ आ रही है कि अल्लाह के नबी किस तरीके से हैंडल करते हुए दिख रहे हैं, ज़रा सा सम अप करना चाहती हूँ पिछले हिस्से को। कैसे अपने तकसीम की हिकमत के साथ नए लोगों को इतना दिया कि मांग मांग कर उन्होंने लिया, और आपने माइंड भी नहीं किया कि चलो इनके दिल झुके रहे। दूसरी बात है कि आप इससे सीखते हैं कि नए नए लोगों को कुछ ना कुछ देना चाहिए, चाय पिला दें, खाना खिला दिया, ताकि वो दीन और इस्लाम की तरफ आते रहें। फिर उसके बाद जो अंसार का हुस्न मलाला पढ़ें, इसको पढ़ते तो मेरा दिल बैठता जा रहा है कि अल्लाह के नबी के ऊपर लोगों के क्या बातें उठी, और सहाबा कराम तो एक जगह भी नहीं बोलते, लेकिन नए नए लोग और अंसार, जिनको इतनी मेहनतों और मददों के बाद अब यहाँ क्या मिला कि सारे हुनैन के अतिये जो हैं वो उनको मिल गए। ताइफ का गजवा, सारा का सारा जो कह लीजिए उसका सब जो एंड अप था, वो सारा नए लोग ले गए और इनको कुछ भी ना मिला। तो अल्लाह के नबी के लिए उनके दिल में बदगुमानी आने लगी, और जब दिल में आई तो मुंह पे आ गई, और जब मुंह पे आई तो फिर एक शख्स ने आकर अल्लाह के नबी तक भी बात पहुँचा दी कि लोगों के दिल में आपके बारे में ये बदगुमानियाँ आ रही हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा, अच्छा, जाओ बुलाओ। तो जब बुलाने भेजा तो सिर्फ अंसार को बुलाए तो कुछ अंसार आ गए, कहा आने दो, कुछ को आने दो, लेकिन कुछ और आए, कहा नहीं, आप रुक जाइए। क्या पता चला क्लोज सर्किट मीटिंग्स में कभी कुछ लोग ऐसे आ जाएं कि जो भरोसे के तो इट्स ओके, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसको आपने नहीं निकाला। और आप ज़रा सुनिए वो जुमले जो अल्लाह के नबी के दुखे दिल से निकले होंगे। आप इस दर्द को महसूस नहीं कर सकते जब अपनों के दिल में किसी के बारे में शक होने हो। आप अपने बच्चों पर लीजिए, बच्चे लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, गिले भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब उनको अपने माँ बाप के ऊपर शक होने लगे, या उनको वो कहें जी आपने तो एक की साइड ली और आप तो बड़े सख्त हैं, तो माँ बाप के दिल पे कितनी छुरियाँ नहीं चलती होंगी। अब सुनिए अल्लाह के नबी का वो खूबसूरत सा बयान, यानी ये बहुत ही रकीकुल बयान बात कह लीजिए। आपने अल्लाह की हमदो सना की, फिर फरमाया, अंसार के लोगों, तुम्हारी ये क्या चहमगोई है जो मेरे इल्म में आई है? ये क्या नाराज़गी है जो जी ही जी में तुमने मुझसे महसूस की है? क्या ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे पास इस हालत में आया कि तुम गुमराह थे, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी और मोहताज थे, اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا اور باہم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے، لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، انصار کے لوگوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ، بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ آپ نے فرمایا، دیکھو اللہ کی قسم، اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے، تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی۔ کیا آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا؟ ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو بیار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھتکارا گیا تھا، آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غم خواری اور غم گساری کی۔ دیکھیے باتیں تو سچی ہیں لیکن کتنی دل پہ چوٹ ڈالنے والی ہیں نا۔ آپ کا جملہ سنیے، انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی سارزی دولت کے لیے ناراض ہو گئے، جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کے نبی ایک لیڈر ہوتے ہوئے اپنی ٹیم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کچھ کو زیادہ دے کر تمہیں پیچھے کر دیا، یا کسی کو عزت دے کر تمہیں اس کی جگہ سے، تمہاری جگہ سے اٹھا کر اس کو بٹھا دیا، تو تم اسی پہ ناراض ہو گئے ہو؟ میرا مقصد اپنی ذات نہیں تھی، میں تو ان کو مسلمان کر دیکھنا چاہتا تھا اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ یعنی تمہاری طرف مجھے کوئی بے فکر نہیں تھی کہ تمہیں دوں نہ دوں، تمہارے لیے اب لینا دینا ایک برابر ہو گیا ہے۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو لے کر اپنے ڈیروں میں پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ چلے اور انصار دوسری راہیں چلے تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، رحم فرما انصار پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں یعنی پوتوں پر۔ ایک ایک لفظ ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر سے خون ٹپک رہا ہے۔ جب دلوں پہ چوٹ پڑتی ہے نا اپنوں کی، کسی بدگمانی، ناراض کی، دل کے غصے اور گراج سے، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا دلوں پہ پھاہے نہیں رکھے، اور اس خوبصورت سی نرم نرم بات کا نتیجہ کیا نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے، آپ کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے، ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور لوگ بھی بکھر گئے۔ کیا کچھ نہیں ہے اس میں، آپ اس کو امیجن تو کیجئے۔ اللہ کے نبی کیسے معاملے سنبھال لیتے تھے، کیسے دلوں میں آئے ہوئے بالوں کو نکال کر پھینکتے تھے کہ وہ جو دلوں میں غصے اور گرج لے کر بیٹھے ہوتے تھے، وہ آپ کی شکل دیکھتے، آپ کی بات سنتے، رو رو کے اپنے دلوں کو ہلکا کرتے تھے۔ تو بہت ہی رقیق بات ہے، میں چاہوں گی کہ آپ لوگ یہاں ڈسکشن کریں، کیونکہ میرا اپنا دل بہت رقیق ہے انصار کی اس رقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے کو دیکھ کر۔ تو تھوڑا سا ڈسکشن ہوگا اس پہ۔